मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 4 सितंबर 2019 है और आज के इस cfeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अखबारों में आप अक्सर दोहा दौर की वार्ता, दोहा राउंड टॉक के बारे में पढ़ते होंगे। एक रेफरेंस के ही संदर्भ में सही, एक रेफरेंस के ही रूप में सही, लेकिन बार बार इस शब्द से, इस वार्ता से आपकी मुलाकात होती होगी। मुझे नहीं मालूम कि इसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं है। मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ी सी बात की जानी चाहिए, क्योंकि ये भारतीय कृषि व्यवस्था, वैसे तो ये सभी विकासशील देशों की कृषि व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारतीय कृषि व्यवस्था से इसका बहुत ज्यादा घनिष्ठ निकट का संबंध है। और एक बात और भी है कि इससे ठीक पहले, यानी कि कल के लेक्चर में, मैंने आप सबसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बात की थी और उसके अंत में मैंने आपसे सब्सिडी के बारे में बताया था कि सब्सिडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। और सब्सिडी भी एक ऐसा अंश है, कह लीजिए, जो किसानों की मदद के लिए लाया गया है। तो सर, चूंकि यह जो दोहा दौर की वार्ता है, ये सब्सिडी से सीधे सीधे जुड़ी हुई वार्ता रही है, तो मुझे लगा कि इसी के कंटिन्यूएशन में दोहा दौर की वार्ता से भी आपको मुझे परिचित करा देना चाहिए, ताकि जब भी ये रेफरेंस आपको पढ़ने को मिले तो आप जो बात कही जा रही है उसे अच्छे तरीके से समझ सके। तो आइए थोड़ी सी दोहा दौर की वार्ता पर बातें कर लेते हैं। देखिए, जो दोहा है, बेसिकली ये एक शहर है, ये शहर है कतर में, यानी कि एक जगह का नाम है। दोहा दौर यानी कि दोहा में कोई बातचीत हुई थी, कतर के शहर दोहा में बातचीत हुई थी, और यह बातचीत हुई थी 2001 में। आज इसे इतने साल हो चुके हैं, इसके बावजूद लगातार ये वार्ता चर्चा में है। 2001 में बातचीत हुई थी, तो किन लोगों के बीच में बातचीत हुई थी? यह बातचीत कराई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व व्यापार संगठन ने, और यह मंत्री स्तरीय बातचीत थी। यानी कि इस बातचीत में जो भाग लेने वाले लोग थे वो अलग अलग देशों के मंत्री थे। तो जो मंत्री स्तरीय बातचीत होती है वह भी अपने आप में महत्वपूर्ण होती, वह भी क्या, यूं कह लीजिए कि वो बहुत महत्वपूर्ण बातचीत होती है, क्योंकि ये जो मंत्री हैं वो अपने अपने राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। तो मेरी समझ से क्लियर होगा, हो गया होगा कि ये क्या है। दोस्तों, इसे एक दो और नाम से जाना जाता है, आपको लिखा हुआ मिल सकता है तो आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, दोहा विकास एजेंडा, ये भी शब्द आपको मिल सकता है। दोहा डेवलपमेंट राउंड, दोहा दौर की वार्ता जो है वो दोहा डेवलपमेंट राउंड का ही हिंदी अनुवाद है। तो ये भी शब्द अगर आपको कभी पढ़ने को मिले तो आप ये मत सोचिएगा कि ये कहीं कुछ और दूसरी बात हो रही है। तो अब देखिए कि ये जो दोहा दौर की जो वार्ता 2001 में हुई थी, इसका पर्पस क्या था, इसके पर्पस को समझ लेते हैं और फिर हम इसकी समस्याओं पर आएंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पज है आप जानते हैं, वो इसमें भी शामिल था कि किस तरीके से दुनिया में जो व्यापार हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से जो व्यापार लोग कर रहे हैं, दुनिया के देश, उनमें जो बाधाएं आ रही हैं उसको कम करते जाना, ये तो पर्पज है ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और कम करके, अब आप देखिए कि पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र। वे देश जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, अब अमेरिका है, जापान है, आपके जर्मनी है, कनाडा है, ये सब के सब डेवलप्ड कंट्री हैं, ये विकसित राष्ट्र हैं, धनी राष्ट्र हैं, कह लीजिए सरल शब्दों में। और दूसरे वे वर्ग के राष्ट्र हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं, तो अब कह लीजिए कि गरीब देश हैं, गरीब नहीं हैं तो उतने धनी नहीं हैं। तो इस तरह से पूरी दुनिया किसी समय में जो दो ध्रुवों में बटी होती थी, अमेरिका और रूस के ध्रुवों में, तो अब दुनिया दो इस तरह के ध्रुवों में बटी हुई है, विकसित और विकासशील। तो अब जब आप एक बहुत शक्तिशाली जो विकसित देश हैं और विकासशील जो कमजोर देश हैं, इनके बीच जब आप व्यापार कराएंगे या कह लीजिए कि कुश्ती लड़वाएंगे, तो सीधी सी बात है कि जो ताकतवर है उसके जीतने की संभावना पूरी है, यानी कि ज्यादा है, वो जीतेगा ही। तो अब सवाल यह है कि क्या इन दोनों को बराबरी स्तर पर आप व्यापार की सुविधाएं दे सकते हैं? सीधी सी बात है, अगर आप व्यापार की सुविधाएं बराबरी स्तर पर देंगे तो ये जो विकासशील देश है ये तो कभी विकसित हो ही नहीं पाएंगे, तो उनकी ताकत के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कि यह भी कोशिश होती है कि कैसे वह कुछ इस तरह का सिस्टम बनाए ताकि ये जो विकासशील देश हैं ये भी आगे बढ़ सकें। ऐसा न हो कि ये जो विकसित राष्ट्र हैं ये विकासशील देशों का उसी तरह से शोषण करने लगे जैसा कि किसी समय में उपनिवेशवाद ने शोषण किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यापार संबंधी अवरोधों को कम करके और फिर विकासशील देशों की व्यापारिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कि उनकी व्यापारिक संभावनाएं बढ़ें, जो इंटरनेशनल जो ट्रेड सिस्टम है उसमें रिफॉर्म करना, कुल मिलाकर के उसका उद्देश्य था। देखिए अब जो अगर आप इसके उद्देश्य को, दोहा वार्ता के उद्देश्य को वाक्य में लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि व्यापार संबंधी अवरोधों को कम करके तथा विकासशील देशों की व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रणाली में सुधार करना, ये उसका मूल उद्देश्य था। तो चलिए, बैठक हुई, बैठक चलती रही। अब इसमें बहुत से दूसरे और भी बिंदु थे, उनकी चर्चा मैं यहां नहीं कर रहा हूं, उद्देश्य आपको बता चुका हूं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेकर के आज भी दोहा वार्ता जीवित है, वो था कृषि सब्सिडी में सुधार। कृषि सब्सिडी में सुधार, शायद अब आपको कुछ कुछ अंदाजा लग गया होगा कि यह सुधार क्या है। तो आइए अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, अब वार्ता हो रही है और इस पूरे के पूरे बातचीत में सीधे सीधे दो पक्ष हैं, दो ग्रुप हैं कह लीजिए, या दो गुट हैं। एक विकसित देशों का गुट है और दूसरा विकासशील देशों का गुट है। नो डाउट कि अमेरिका किस में होगा, विकसित देशों में ही होगा, ठीक है। और विकासशील देशों में कौन होगा, भारत, नो डाउट चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और दूसरे बहुत सारे देश। इन चार देशों के नाम मैंने इसलिए लिया है कि ये चारों देश फिलहाल विकासशील देशों का नेतृत्व कर रहे हैं, मतलब विकासशील देशों के बीच इन चारों देशों को काफी अभी ताकतवर माना गया है। इनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, दुनिया में इनका अलग तरीके का थोड़ा सा दबदबा बन गया है, इसलिए मैंने इन चार देशों का नाम लिया है। अब आप देखिए कि बातचीत होती रही, अब हम टकराव पर आते हैं कि टकराव कहां हुआ। ये दोहा वार्ता असली में असफल वार्ता रही है ना, टकराव हो गया और आज तक उसका हल नहीं निकल पाया है। अब देखिए टकराव क्या है, जो विकसित देश है वो क्या चाह रहे हैं, विकासशील देशों से वो कह रहे हैं कि आप दो काम कीजिए। पहला तो ये है कि आप कृषि सब्सिडी कम कीजिए, एग्रीकल्चरल जो सब्सिडी आप देते हैं वो कम कीजिए। और दूसरी बात उन्होंने कही कि आप अपने कृषि बाजार को हमारे लिए खोल दीजिए, विकसित देशों के लिए खोल दीजिए। अब वो ये बात इसलिए कह रहे हैं, देखिए कि क्या उसका कारण क्या है। जैसे भारत कृषि सब्सिडी देता है, सब्सिडी क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर यूरिया मार्केट में 1,000 रुपए बोरी है, 50 किलो की कीमत 1,000 रुपए, मैं अनुमान के आधार पर कह रहा हूं, उसका बात कुछ रियलिटी से आप बिल्कुल इसको जोड़ करके मत देखिएगा। 1,000 रुपए में 50 किलो यूरिया की बोरी मिल रही है, ठीक है। सरकार कहती है कि नहीं, किसानों को हम 500 रुपए में देंगे, ठीक है। 500, तो 500 रुपए, अब कंपनी तो आपको 1,000 रुपए में बेच रही, क्योंकि उसकी लागत ही 900 रुपए आ रही है, तो 1,000 रुपए में तो वो बेचेगी ही। तो अब सरकार कहती है कि ठीक है, आप किसानों को, कंपनी से कहती है कि आप किसानों को 500 रुपए में ही दीजिए, हम आपको 500 रुपए देंगे, 500 रुपए की भरपाई हम करेंगे। तो किसानों को जो यूरिया है वो 500 रुपए में मिल गया, सरकार ने 500 रुपए की सब्सिडी दे दी। तो इस तरीके से कई चीजों पर सरकार सब्सिडी देती है किसानों को, जो खासकर एग्रीकल्चर के काम में आते हैं। अब उससे क्या फायदा हुआ कि जो अब यूरिया से, यूरिया का इस्तेमाल गेहूं के लिए किया जा रहा है, धान के लिए किया जा रहा है, दलहन तिलहन के लिए किया जा रहा है, इनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि जब किसानों को इस्तेमाल की जाने वाली चीजें सस्ती कीमत पर मिलेंगी तो वो जो उत्पादन कर रहे हैं उसकी लागत कम हो जाएगी कि नहीं, उसकी लागत कम हो जाएगी। उसकी लागत अगर कम हो गई तभी तो सरकार फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कम घोषित करेगी। जैसे कल के लेक्चर में मैंने 1,000 रुपए की धान की कीमत लागत आई और उसको 1200 समर्थन मूल्य की बात बताई थी। अगर मान लीजिए कि उनको यूरिया खाद भी 1,000 रुपए में मिल रहा है, सारी चीजें मार्केट के रेट में मिल रही हैं और पता लगा कि इसकी जो लागत ही है वो 1500 रुपए क्विंटल आ गई, धान की, तो सरकार को 1800 रुपए, 1700, 1800 रुपए तो घोषित करना पड़ेगा ना। तो पैसा कहां लग रहा है, सरकार को ही देना पड़ रहा है, और सरकार को नहीं देना पड़ रहा। अगर चीजें महंगी हो गई हैं तो लोगों को भी तो चीजें महंगी मिलेंगी, मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनको तो महंगी चीजें मिलेंगी। तो ये बहुत ही इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जबरदस्त रूप से लिंक्ड है। तो ये कहते हैं कि आप सब्सिडी कम कर दीजिए, सब्सिडी जब आप कम कर देंगे तो आपके यहां की चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, और फिर क्या कहते हैं, अपने कृषि बाजार को खोल दीजिए और फिर हमारे लिए ओपन कर दीजिए, अमेरिका से गेहूं आएगा और फलानी जगह से चावल आएगा, फलानी जगह से दलहन आएगा, फलानी जगह से तिलहन आएगा, हम भेजेंगे आपको और उनकी चीजें हमसे सस्ती होंगी। तो ठीक है भैया, हम तो आपको आपके यहां से चीजें मंगा लेंगे, सस्ती चीजें मिल जाएंगी। हमारे किसानों का क्या होगा, हमारी खेती का क्या होगा, जिसमें हमारी लगभग लगभग 55% से ज्यादा जनसंख्या जुड़ी हुई है, उनका क्या होगा, वो तो बेरोजगार हो गए, हमारी पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था नष्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम सब्सिडी कम नहीं करेंगे, इनका जोर है कि हम सब्सिडी कम नहीं करेंगे। और मजेदार बात ये है फ्रेंड्स, आप शायद हंसे भी, कि अमेरिका और जो दूसरे विकसित देश है, जिसमें अमेरिका तो सबसे ज्यादा अपने किसानों को सब्सिडी देता है, वो अपने किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये जो विकासशील देश है ये अपने किसानों को सब्सिडी ना दें। ये खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, कम करने की बात जरूर कह रहे हैं। तो भारत इस पक्ष में है कि नहीं, हम सब्सिडी कम नहीं करेंगे और हम अपने कृषि बाजार को बिल्कुल ओपन भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ओपन कर दिया तो ये जो विकसित देश हैं इनका सामान भारतीय बाजार में बाढ़ की तरह आकर के हमारी पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था को चौपट कर देगा। बड़ी मुश्किल से जाकर के हम कृषि के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं, पता लगा कि हम फिर पर निर्भर हो गए। अभी तो चलो किसी तरह से चल जाएगा, कौन जानता है कि 15-20 साल के बाद जब हमारी कृषि व्यवस्था चौपट हो जाए तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी चीजों की कीमतें कितनी ज्यादा बढ़ा देंगे। और चूंकि ये जो विकसित राष्ट्र हैं बहुत वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, तो नो डाउट कि उनकी लागत भी कम आती है, हम उनका मुकाबला उस तरीके से नहीं कर सकते। तो भारत इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है, और जो दूसरे और भी विकासशील देश हैं वह भी इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात है WTO के बारे में, कि इस प्रस्ताव के बारे में, कि इसको तब तक लागू नहीं किया जा सकेगा जब तक कि जितने भी देश WTO के मेंबर हैं इस पर सहमत नहीं हो जाते, यानी कि सभी देशों का की सहमति जरूरी है। ये नहीं कि इसको आप डेमोक्रेटिक तरीके से जो बहुसंख्यक वर्ग होगा उसकी बात मान लेंगे, सभी की सहमति आवश्यक है। तो दोस्तों यह है दोहा वार्ता, और भारत लगातार, भारत पर बहुत दबाव पड़ता है कि वो दोहा वार्ता को मान ले, लेकिन भारत इसे नहीं मान रहा है, और इनफैक्ट भारत को मानना भी नहीं चाहिए। और यहां भारत ने एक बहुत ही दृढ़ता का परिचय दिया है, और सच पूछिए तो दोहा वार्ता में भारत ने जिस दृढ़ता को दिखाया है उसके कारण जो दूसरे विकासशील देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, देखिए लैटिन अमेरिका के हैं, अफ्रीका के हैं, एशिया के भी कुछ देश हैं, वो भारत को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अपना लीडर भी मानने लगे हैं कि नहीं, भारत ही हमारे हितों की सही मायने में रक्षा कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये दोहा वार्ता के बारे में मूलभूत बातें थी, और मैं समझता हूं कि अब कम से कम ये जो दोहा वार्ता है आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट हो गया होगा। तो दोस्तों इस टॉपिक के बारे में बस इतना ही, अब आप सब मुझे इजाजत दें, नमस्कार।